हमारे जर्नी जीवन की यात्रा में अच्छे और बुरे दोनों समय के होते हैं। प्रत्येक समय में अलग चुनौतियां होती हैं। अब चुनौतियों को किस प्रकार सामना करते हैं यह मूलतः हम पर निर्भर करता है। हमने जीवन की फवानीति किस पर रखी है? हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के सुसमाचार सुदृढ़ और मजबूत बुनियाद उपलब्ध कराता है। इसका निर्माण थोड़ा थोड़ा करके प्रभु के उसके बच्चों के लिए अनंत योजना का ज्ञान प्राप्त करते हुए होता है। उद्धारकर्ता एक निपुण शिक्षक है, हम उसका अनुसरण करते हैं। धर्मशास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं और हम उनका अनुसरण करने के लिए धार्मिकता का एक परिपूर्ण उदाहरण उपलब्ध कराता है। मैंने पिछले महासम्मेलनों में गिरजे के सदस्यों के साथ अपनी माँ की नोटबुक में से कई पाठों को बांटा जो उन्होंने अपनी सहायता संस्था के लिए तैयार किए थे। ये पाठ आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने उस समय थे। उनमें से एक उदाहरण जो चार्ल्स एडवर्ड जेफरसन यीशु मसीह के चित्र पर लिखे थे 1908 में थे, इस प्रकार थे। मसीह होना यीशु मसीह की इतनी सच्चाई और इतने उत्साह से प्रशंसा करना है कि हम उसके समान बनने के लिए संपूर्ण जीवन दे देते हैं। हम उसके बोले वचनों के द्वारा, उसके किए कामों द्वारा और उसकी खामोशी के द्वारा उसकी गवाही प्राप्त करते हैं। हम उसके बारे में जान सकते हैं उसके प्रभावों के द्वारा, जब उसने पहली बार अपने मित्रों और दूसरी बार अपने शत्रुओं पर और तीसरी बार उन लोगों के जीवन में बनाए जो उसके समय में रहते थे। 20वीं शताब्दी के जीवन में एक परिस्थितियों में से एक असंतोष है। लोग कुछ तो पाने की इच्छा तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है यह क्या इच्छा है। दौलत आ चुकी है, मानव कौशलता के और ज्ञान की उपलब्धियों से भरा है, लेकिन हम अभी भी बेचैन हैं, असंतुष्ट हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। यदि हम नया नियम खोलें तो इन वचनों को पढ़ते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, तुम सामर्थ पाओगे, तुम्हें आनंद मिलेगा। मेरी मां को यह विचार पसंद था। मेरी स्त्री पुरुषार्थ तक प्रभावित होते हैं जिनके अनुसार वो जीवन का चुनाव करते हैं, जिनको वे उदाहरण रूप में देखते और उनकी नकल करते हैं। यीशु एक महानतम उदाहरण है। स्थायी शांति पाने का एक मार्ग उसी का जीवन है। यीशु के मसीह में हमें क्या अध्ययन करना चाहिए? नए नियम के लेखकों ने यीशु मसीह के कद, उसके कपड़े और जिस घर में वह रहता था के बारे में परवाह नहीं की। वह अस्तबल में पैदा हुआ, बड़ाई का काम किया, 3 साल तक सिखाया और फिर सलीब पर मर गया। नया नियम उन लोगों द्वारा लिखा गया था जिन्होंने निश्चित किया था कि हमारी आंखें इस आश्वासन के साथ उस पर टिकी रही कि वह वास्तव में परमेश्वर का बेटा था और है, संसार का उक्तिदाता, उद्धारकर्ता। उद्धारकर्ता के दृष्टांतों में से हम एक हमारे समय में लागू होता है। मत्ती अध्याय 13 में हम इसको पढ़ते हैं। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें निकली तो जंगली दाने दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उन्होंने उसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है? क्या हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करो। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते समय तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों दानों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के शाम समय मैं उनको काट लूंगा, काटने वालों से कहूंगा पहले जंगली दाने के पौधे बटोर लो और उनको जलाने के लिए एक गट्ठा बांध लो और गेहूं को मेरे खेत खत्ते में डाल दो। पूरी मानव जाति के पुराने शत्रु शैतान को चारों तरफ जंगली दाने बिखेरने के लिए बहुत से उपकरण मिल गए हैं। उसने हमारे घरों की पवित्रता में सेंध लगाने के उपाय खोज लिए हैं। दुष्ट और संसारिक तरीके हमारे चारों तरफ फैल गए हैं और इनसे बुरी तरह से बचना बहुत कठिन हो गया है। ये तारों के रास्ते आते हैं, ये हवा के द्वारा उपकरण में आते हैं जो हमें ज्ञान देने और मनोरंजन देने के लिए बनाए गए हैं। गेहूं और जंगली के दाने एक साथ उगते हैं। एक व्यक्ति जो खेत की देखभाल करता है उसे पूर्ण शक्ति से और जो अच्छा है उसका पोषण करना चाहिए और उसको इतना मजबूत और इतना सुंदर बनाना चाहिए कि जंगली दाने के प्रति उसका कोई आकर्षण ना रहे, ना आंखों के लिए ना ही कान के लिए। पूर्वे के गिरजे के रूप में हम बहुत ही आशीषित हैं कि हमारे पास प्रभु और उद्धारकर्ता का समाचार है जिसकी बुनियाद पर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। मॉर्मन की पुस्तक सेकंड दूसरे निफाई से हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो तुम में से फिर कहता हूं कि यदि तुम इस मार्ग से प्रवेश करते हो तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, तब वह तुम्हें सब बातें दिखाएगी जो तुम्हें करनी चाहिए। हमें संसार के शोर को शांत धीमी वाणी को दबाने और पराजित करने नहीं देना चाहिए। हमें निश्चित रूप से उन घटनाओं के बारे में चेतावनी दी गई जिनका सामना हम अपने समय में करेंगे। हमारी चुनौतियां कि हम अपने आप को उन घटनाओं का सामना करने के लिए कैसे तैयार करते हैं जिनके विषय में प्रभु ने कहा कि अवश्य होंगी। हमारे चिंतित समाज में बहुत से जानते हैं कि अशांत सुसमाचार संसार में परिवार के विघटन से केवल दुख और निराश आती है। इस गिरजे के सदस्य के रूप में हमें परिवार को समाज और अनंत काल की मूल इकाई के रूप में बचाने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। भविष्य वक्ताओं ने हमें पारिवारिक मूल्यों के कमजोर पड़ने, ना टाले जा सकने वाले और विनाशकारी परिणामों के विषय में बार बार चेतावनी दी है। जबकि संसार हमें निरंतर देखता रहता है, हमें निश्चित होना चाहिए कि हमारे उदाहरण उस योजना को थामेंगे और समर्थन करेंगे जिसे प्रभु ने अपने बच्चों के लिए यहाँ नश्वरता में बनाया है। सबसे बड़ी धार्मिक शिक्षा उदाहरण द्वारा दी जानी चाहिए। संसार के दबावों को सहने के लिए हमारे घर पवित्र होने चाहिए। याद रखें कि प्रभु की सबसे बड़ी आशीषें धार्मिक परिवारों द्वारा आती और दी जाती हैं। पिता माता के रूप में हमें निरंतर अपनी उपलब्धियों का ध्यानवर्क अवलोकन करना चाहिए। एक बच्चे को सबसे प्रभावशाली शिक्षा अपने चिंतित और धर्मी माता पिता से मिलती है। हम पहले माता की भूमिका का अवलोकन करेंगे। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली के द्वारा इस उदाहरण को सुने। स्त्रियां जो एक मकान को घर बनाती हैं, समाज में से उनसे बहुत अधिक योगदान देती है। एक बड़ी आर्मी को या एक प्रभावशाली कंपनी का मार्गदर्शन करती है। उसका प्रभाव कौन कीमत लगा सकता है जो एक माँ अपने बच्चों पर, एक दादी नानी अपनी पीढ़ी पर और चाचा चाची मामी मामा मम्मी अपने बहनें रिश्तेदारों पर डालती हैं। हम मूर्तियों के प्रभाव को नापना या गिनना शुरू नहीं कर सकते जो अपने स्वयं के तरीके में सुदृढ़ पारिवारिक जीवन का निर्माण और हमेशा की अच्छाई के लिए भविष्य की पीढ़ियों का पोषण करती हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज की माताओं को अपने घर में मजबूत करने के लिए बहुत अधिक अवसर और गंभीर चुनौतियां हैं। अब हम माता पिता की भूमिका का अवलोकन करते हैं जो हमारे जीवनों में अदा करते हैं। पिता अपने बच्चों को आशीष देते, पवित्र विद्याएं करते, यह उनके जीवन में आत्मिक विशेषताएं बन जाती हैं। पितावाचक रूप से पारिवारिक प्रार्थनाओं, प्रतिदिन धर्मशास्त्र अध्ययन, साप्ताहिक पारिवारिक घरेलू संध्या में शामिल होते हैं। पिता पारिवारिक पर्वों का निर्माण करते में शामिल होते हैं, छुट्टियों की यात्रा और शहर की योजना बनाने में मदद करते हैं जिसमें परिवार के सारे सदस्य शामिल होते हैं। इन विशेष अवसरों पर मिलकर बिताई गई यादें बच्चे उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। पिता नियमित रूप से हर बच्चे से अलग अलग भेंट करते और उन्हें सुसमाचार की सीख देते हैं। पिता बेटे और बेटियों का मूल्य सिखाते हैं। वह उनको जीवन में योग्य लक्ष्य स्थापित करने मदद करते हैं। पिता विश्वसनीय सुसमाचार का उदाहरण स्थापित करते हैं। कृपया याद रखें भाइयों, पिता के रूप में इजरायली आप पे आपकी नियुक्ति समय और अन्य काल में आपकी अत्यधिक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। एक ऐसी नियुक्ति जिसके लिए आप कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। बहुत साल पहले समय स्टेक कॉन्फ्रेंस में जो संदेश हम प्रस्तुत कर रहे थे उसकी विषय वस्तु को दर्शाने के लिए हमने एक फिल्म की क्लिप बनाई दिखाना चाहते थे। एक साल के दौरान जब हम गिरजे के नियुक्त स्टेक सम्मेलन भेंटों की यात्रा की, हमने फिल्म विषय वस्तु से बहुत परिचित हो गए। इन पूरे सालों के दौरान संदेश मेरे मन में कायम रहा था। के बारे में बताया गया था। एक शाम को माँ व्यग्रता से कुछ फलों को बोतलों में डालकर काम कर रही थी। अंततः सब सोने चले गए, सब कुछ शांत हो गया। उसने निर्णय किया कि अब वह फलों को बोतल में डाल सकती है। जब उसने फलों को छिलना और काटना शुरू किया, दो लड़के किचन में आ गए और कहा वे अपनी रात की प्रार्थना के लिए तैयार हैं। काम में विघ्न ना चाहते हुए मां ने तुरंत लड़कों से कहा, क्यों तुम आज रात अपने आप अकेले प्रार्थना कर लो, मां फलों के काम को जारी रखेगी। दोनों में से बड़े ने कहा, मना कर दिया, क्या अधिक महत्वपूर्ण है प्रार्थना या फल। कभी कभी हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जब हमारे बच्चे को पाठ सिखाने का मौका होता है जिसका उनके जवान जीवन साथी स्थायी प्रभाव पड़ेगा। अवश्य ही प्रार्थना फलों से अधिक महत्वपूर्ण है। एक सफल माता पिता अपने बच्चों के जीवन में अवसरों का उपयोग करने के लिए कभी भी इतने अधिक व्यस्त नहीं हो सकते कि एक महत्वपूर्ण पाठ नहीं सिखाया जा सके। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे बहुत से सालों में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है जब स्वर्ग में हमारे पिता के बच्चों को विश्वसनीय समर्पित माता पिता के मार्गदर्शन प्रभावों से अधिक जरूरत पड़ी हो। हमारे पास महान और श्रेष्ठ माता पिता की विरासत रही है जो अपने परिवारों का विश्वास और उत्साह से पालन करने के लिए ऐसे स्थान की खोज में सब कुछ त्याग कर देते हैं ताकि अगली पीढ़ी के पास उसने अधिक महान अवसर हों। हम स्वयं अपने भीतर ऐसी दृढ़ निश्चय आत्मा को खोजना चाहिए और चुनौतियों जिनका हमें सामना करते हैं उन पर भी उसी त्याग की आत्मा के साथ विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें भविष्य की पीढ़ी के मन में हमारे प्रभु और उदारकर्ता की शिक्षाओं की मजबूत और आत्मीयता बैठानी चाहिए। और अब मेरे बेटो, याद रखो कि मुक्तिदाता की चट्टान पर है जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिस पर तुम्हें अपनी नींव रखो ताकि जब शैतान अपनी प्रबल हवाओं को फेंकेगा, हाँ बवंडर में बिजली चमकाएगा, हाँ जब उसके सारे ओले बरसेंगे, उसके प्रबल तूफान तुम्हारे थपेड़े मारेंगे, तुम्हारी दुखों की घाटी और अंतहीन श्राप में खींचने के लिए उसके पास बल नहीं होगा, क्योंकि जिस चट्टान पर तुम निर्माण हुआ है वह मजबूत आधार है, एक ऐसा आधार जिस पर यदि मनुष्य का निर्माण हो तो वह गिर नहीं सकते। ये यीशु मसीह का सुसमाचार जो हमें मैं इसकी गवाही देता हूं यीशु मसीह के नाम।
आमीन।